بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا، زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ شروتا مترو، آج آپ سورہ مائدہ کی آیت کرمانک 65، 66 اور 67 کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ تلاوت کا شرح پراپت کیا ہے قاری صدیق منشاوی نے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم۔ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون۔ يا والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔
صدق الله العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتہن کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور یدی آسمانی کتاب والے ایمان لے آتے اور ایشور سے ڈرتے تو ہم ان کے پاپوں کو کشما کر دیتے اور انہیں انکمپاؤں کے باغوں میں پروشت کر دیتے، اور یدی وے تورات، انجیل اور جو کچھ ان کے پالنہار کی اور سے ان پر اتارا گیا تھا سب کو قائم کرتے، अर्थात उन पर कार्यबद्ध रहते, तो निसंदेह वे अपने ऊपर और पैरों के नीचे से ईश्वरीय विभूतियां प्राप्त करते। उनमें से एक गुट मध्यमार्गी है, परंतु अधिकांश लोग बुरे कर्म करते हैं। हे पैगंबर, आपके पालनहार की ओर से जो आदेश आप पर उतारा गया है उसे लोगों तक पहुंचा दीजिए, और यदि आपने ऐसा न किया तो मानो आपने उसके संदेश को पहुंचाया ही नहीं। और जान लीजिए कि ईश्वर आपको लोगों से सुरक्षित रखेगा, निसंदेह ईश्वर काफिरों का मार्गदर्शन नहीं करता।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। हमारे प्रसारण को आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9510 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। दोस्तों, हमें आशा है कि हमारा ये प्रसारण भी आपको सदा की भांति ही पसंद आता होगा। हमारी वेबसाइट का एड्रेस बदल गया है। हमारी वेबसाइट अब आप parstoday.ir पर देख सकते हैं, और हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। आज मंगलवार है, मुर्दाद माह की 12, जिलहिज्जा की 23 और अगस्त की 3 तारीख। हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप विश्व समाचार सुनेंगे, उसके उपरांत राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। राजनीतिक चर्चा के उपरांत आप सुनेंगे कार्यक्रम रोहिंग्या त्रासदी, और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा कुरानी किस्से। तो दोस्तों, ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा, और अभी आप कुछ क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनेंगे। अब आप रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। वरिष्ठ नेता ने नए राष्ट्रपति को अनुमोदित किया, कहा जनता से सच बोले। ईरान ने ब्रिटेन और अमेरिका के भड़काऊ बयान पर चेतावनी दी है। फिलिस्तीनियों का संघर्ष कामयाब रहा, इसराइली अपनी बातों से पीछे हटा। पेगासस जासूसी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज हुई। और अब आप मरियम मेहरदादी और अख्तर अब्बास से विस्तार से समाचार सुनिए।
तेहरान स्थित इमाम खुमैनी हुसैनिया में 13वें राष्ट्रपति कार्यकाल के उद्घाटन समारोह में इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनाई ने आधिकारिक तौर पर सैयद इब्राहिम रईसी को ईरान के अगले राष्ट्रपति के रूप में अनुमोदित कर दिया। ये समारोह मंगलवार की सुबह कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल के पूर्ण अनुपालन के तहत आयोजित हुआ, जिसमें देश के शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया। समारोह की शुरुआत में देश के गृहमंत्री अब्दुल रजा रहमानी फजली ने 18 जून को आयोजित होने वाले राष्ट्रपति चुनावों पर एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें रईसी ने जीत हासिल की थी। तेहरान पुलिस ने सुबह 10 बजे से 2.5 घंटे के लिए तेहरान में हवाई अड्डों के बंद रहने और समारोह स्थल के पास सड़कों पर यातायात सीमित करने की घोषणा की थी।
इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता ने राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी को मिलने वाले जनादेश के अनुमोदन समारोह में बल दिया कि राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बने रहें, लोगों से सच बोलें और भ्रष्टाचारियों से निडर होकर संघर्ष करें। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता ने मंगलवार को राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी को मिलने वाले जनादेश के अनुमोदन समारोह में राष्ट्रपति चुनाव में जनता की उपस्थिति को पूर्ण रूप से अर्थपूर्ण और धार्मिक लोकतंत्र का प्रतीक करार दिया। सुप्रीम लीडर ने जनादेश के अनुमोदन समारोह को संविधान पर निर्भर और इमाम खुमैनी के हाथों शुरू किया जाना करार दिया और कहा कि ये समारोह वास्तव में देश के संचालन और कार्यपालिका में बहुत ही अहम विषय का प्रतीक है। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता ने पूर्ण सुरक्षा और पारदर्शिता के साथ चुनाव के आयोजन की ओर संकेत करते हुए कहा कि काफी समय से दुश्मनों के हलकों में चुनाव के बहिष्कार की साजिश पर काम हो रहा था और देश के भीतर भी कुछ लोगों ने निश्चेतना और कुछ लोग शायद कुछ मकसद से इसी लाइन पर लग गए, लेकिन राष्ट्र ने ठोस जवाब दिया और हालात तथा स्थिति के दृष्टिगत चुनाव में जनता की भरपूर भागीदारी रही।
ईरान के नए राष्ट्रपति का कहना है कि इमाम खुमैनी और इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता के निर्देशों की वजह से इस्लामी क्रांति ने प्रगति की और उसे मजबूती हासिल हुई। ईरान के नए राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने मंगलवार को राष्ट्रपति के अनुमोदन समारोह में कहा कि चार दशकों पहले महान इमाम खुमैनी के नेतृत्व में और कर्तव्यनिष्ठ जनता के साहस के कारण इस सरजमीन पर धार्मिक लोकतंत्र का सूर्य उदय हुआ। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि इन चार दशकों में अधिकारियों और जनता ने लोकतंत्र व्यवस्था को मजबूत बनाने में काफी प्रयास किए। उन्होंने कहा कि इन 40 वर्षों के दौरान क्योंकि इमाम खुमैनी और इस्लामिक क्रांति के वरिष्ठ नेता और व्यवस्था की नीतियों पर ध्यान दिया गया, इसीलिए प्रगति और विकास हुआ।
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ब्रिटेन और अमरीका के भड़काऊ बयानों की निंदा की है। इरना की रिपोर्ट के अनुसार ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबजादे ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, ईरान फारस खाड़ी में शांति और सुरक्षा का जिम्मेदार होने की हैसियत से ब्रिटेन और अमरीका के भड़काऊ बयानबाजी की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने ईरानी जहाजों पर लगातार हमलों पर चुप्पी साध रखी है वे अब ईरान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और निराधार आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान के खिलाफ किसी भी कदम का तुरंत और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
ये समाचार रेडियो तेहरान से प्रसारित किए जा रहे हैं। सीरिया सेना ने उत्तर पश्चिमी शहर अलेप्पो के ग्रामीण इलाके में एक जासूसी ड्रोन को मार गिराया है। लिबनान के अलमयादीन टीवी चैनल ने सोमवार को इस घटना की सूचना दी। जिस लक्ष्य को मार गिराया गया वो एक निगरानी UAV था। अलेप्पो के दक्षिण में इस जासूसी ड्रोन को मार गिराया गया। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि इसराइल ने यह ड्रोन भेजा था या आतंकवादी गुटों की कारस्तानी थी। शहर के आसपास के इलाके अभी भी विदेश समर्थित विभिन्न आतंकवादी संगठनों के नियंत्रण में हैं।
मीडिया सूत्रों का कहना है कि पूर्वी सीरिया में अमरीकी समर्थित कुर्द मिलिशिया के एक अहम ठिकाने पर रॉकेट हमला हुआ है। रूसी समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार की रात पूर्वी सीरिया के देरुजुर शहर के अल उमर ऑयल फील्ड के निकट स्थित अमरीका समर्थित कुर्द मिलिशिया के एक महत्वपूर्ण ठिकाने पर रॉकेट हमला हुआ। रिपोर्ट के अनुसार अज्ञात हमलावरों ने, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि क्षेत्र के आसपास बसे अरब कबीलों में से थे, अशहिल इलाके में अमरीकी समर्थित कुर्द मिलिशिया के एक महत्वपूर्ण ठिकाने पर रॉकेट और आरपीजी से हमला किया। ये ठिकाना इन बड़े ठिकानों में से एक है जो अलोमर ऑयल फील्ड के आसपास स्थित है और हमलावर अमरीकी सैनिक उसे गैर कानूनी सैन्य अड्डे के रूप में प्रयोग करते हैं।
फिलिस्तीनी प्रतिरोधी संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर ज़ायनी शासन ने रेड लाइन पार की तो क्षेत्र में उथल पुथल मच जाएगी, जैसा कि कुछ महीने पहले स्वार्ड ऑफ अल कुद्स की लड़ाई के दौरान हुआ था। फिलिस्तीनी प्रतिरोध की इस चेतावनी के बाद मंगलवार को इसराइल के सुप्रीम कोर्ट ने अवैध अधिकृत पूर्वी बैतुल मुकद्दस स्थित शेख जर्रा इलाके में फिलिस्तीनियों के 4 घरों को खाली कराने के अपने फैसले को टाल दिया है। अल अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीनी प्रतिरोध ने मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले मिस्र को सूचित कर दिया था कि शेख जर्रा समेत पूरे अवैध अधिकृत फिलिस्तीन पर उसकी नजर है और दुश्मन ने अगर कोई गड़बड़ की तो पूरा क्षेत्र हिलकर रह जाएगा। फिलिस्तीनियों की इस चेतावनी के बाद मंगलवार को इसराइली अदालत ने शेख जर्रा के निवासियों के सामने तथाकथित सुलह का एक प्रस्ताव रखा था जिसे फिलिस्तीनियों ने ठुकरा दिया था।
फिलिस्तीनी सूत्रों ने वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में इसराइली सैनिकों के साथ झड़पों की खबर दी है। फिलिस्तीन की मान न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार की सुबह इसराइली सैनिकों की वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में झड़प शुरू हो गई, जिसके दौरान इसराइली सैनिकों ने फिलिस्तीनियों पर फायरिंग शुरू कर दी। फिलिस्तीनी सूत्रों का कहना है कि इसराइली सैनिकों की फायरिंग में 6 फिलिस्तीनी घायल हो गए। अस्पताल सूत्रों का कहना है कि घायलों में एक फिलिस्तीनी की हालत बहुत नाजुक है। इसराइली अपने विस्तारवादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए आए दिन फिलिस्तीन के विभिन्न इलाकों पर हमले करते हैं और निराधार आरोपों के साथ फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार करते हैं। इसराइल की जेलों में अब तक 4,500 फिलिस्तीनी बंद हैं, जिनमें 250 बच्चे और 47 महिलाएं हैं।
भारत के 4 पत्रकारों और एक कार्यकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि वो केंद्र सरकार के पेगासस स्पायवेयर के इस्तेमाल को लेकर जानकारी देने का निर्देश दें। لائیو لا کی رپورٹ کے مطابق پترکار پرنجوائے گوہا ٹھاکرتا، ایس این ایم آبیدی، پریم شنکر جھا، روپیش کمار سنگھ اور کارکرتا اپسا شاتکشی کا کہنا ہے کہ فورنسک جانچ میں پشٹی ہوئی ہے کہ پیگاسس اسپائی ویئر کے ذریعے ان کے فون کی ہیکنگ کی گئی ہے۔ پترکار ٹھاکرتا آبدی اور جھا نے سمان طرز پر 3 دن الگ الگ یاچکائیں سپریم کورٹ میں دائر کی ہے، جبکہ روپیش کمار سنگھ اور شاتکشی نے عدالت میں ایک یاچکا دائر کی ہے۔
چناؤی ماحول نہ ہونے کے باوجود 1 جولائی سے 10 جولائی کے بیچ 17ویں چرن میں 150.51 کروڑ روپے کا وادی چناوی بانڈ بیچا گیا ہے۔ اس میں سے 64% سے ادھک کی راشی بھارتی اسٹیٹ بینک کے کولکتہ پرانچ سے بیچی گئی ہے۔
بھارت کی پروش ہاکی ٹیم ٹوکیو اولمپک کے سیمی فائنل مقابلے میں بیلجیم کی ٹیم سے 2 کے مقابلے میں 5 گول سے ہار گئی۔ آخری کوارٹر میں بیلجیم نے 3 گول داغے اور بھارت پر کلیئر لیڈ بنا لی۔ بھارتی ٹیم نے پہلے کوارٹر میں 2-1 سے بڑھت حاصل کر لی تھی، جو انہوں نے آخری 3 کوارٹر میں گنوا دی۔ بیلجیم کی ٹیم نے واپسی کرتے ہوئے 59ویں اور 60ویں منٹ میں گول داغ کر میچ اپنے نام کر لیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے انتراشٹریہ سماچار سماپت ہوئے۔
یہ تہران ہے اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
دوستوں، میں ہوں رویش زیدی اور آپ کا سواگت ہے راجنیتک چرچا کے دینک کاریکرم میں۔ آج کے کاریکرم میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے اسلامی گڑتنتر ایران کے نئے راشٹرپتی کے انومودن سماروہ کی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متن حکم رہبر معظم انقلاب اسلامی۔
اور پھر بات کریں گے افغانستان کی تازہ استھتی کے بارے میں۔
یا در میز واقعی مذاکرہ زانو بزانو میشینیم۔
اور انت میں چلیں گے بھارت، جہاں مودی سرکار کو وپکش دوارا دکھائی گئی طاقت کے بارے میں چرچا کریں گے۔
ہمارا سب سے بڑا مدعا ہے کسان۔
تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایران کے نئے راشٹرپتی سید ابراہیم رئیسی کے انومودن سماروہ کی۔ اسلامی کرانتی کے سروچ نیتا نے اس اوسر پر نئے راشٹرپتی اور ان کے سہیوگیوں کو نصیحت بھی دی ہے۔ اس بارے میں وستار سے ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی اختر عباس۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متن حکم رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی آقای خامنه‌ای مدظ الله العالی، رئیس جمهور منتخب و محترم حضرت حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دامت برکاتہ۔
منگلوار 3 اگست کو تہران استھت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ حسینیہ میں 13ویں راشٹرپتی کاریکال کے ادگھاٹن سماروہ میں اسلامی کرانتی کے سروچ نیتا آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی نے آدھیکارک طور پر سید ابراہیم رئیسی کو ایران کے اگلے راشٹرپتی کے روپ میں انومودت کر دیا ہے۔ کووڈ سرکشا پروٹوکول کے پورن انوپالن کے تحت آیوجت ہوئے کاریکرم میں دیش کے شیرش ادھیکاریوں نے بھی بھاگ لیا۔ راشٹرپتی سید ابراہیم رئیسی کو ملنے والے جنادیش کے انومودن سماروہ میں اسلامی کرانتی کے سروچ نیتا نے اپنے انومودن آدیش میں چناؤ میں لوگوں کی سارتھک اور سمان جنک اپستھتی اور ایک لوک پریہ اور شاندار پربندھن کے انوبھو ویکتی کے चुनाव को क्रांति के प्रबुद्ध मार्ग अर्थात न्याय के मार्ग पर चलने के लिए राष्ट्र के दृढ़ संकल्प का संकेत करार दिया। आयतुल्लाह उज़्ज़मा सैयद अली खामनाई ने सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास के लिए देश की तत्परता का जिक्र करते हुए उत्पादन के मार्ग में मौजूद बाधाओं को दूर करने, राष्ट्रीय मुद्रा को मजबूत करने, समाज के मध्य और निचले तबके को सशक्त बनाने पर जोर दिया। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने राष्ट्रपति रईसी को नसीहत देते हुए कहा कि वो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बने रहें, लोगों से सच बोलें और भ्रष्टाचारियों से निडर होकर संघर्ष करें।
एक नुक्ते इन है कि इन जाबजाही कुदरत उम्मीद आफरीन है, चुन कसान जदीदी वारद मैदान मिशवंद, इब्तकारहाय जदीदी दारन, चेहराहाय जदीदी हस्तंद, इरादेहाय ताज़ेई वारद मैदान मिशन।
उन्होंने कार्यपालिका में सत्ता हस्तांतरण को आशावादी करार दिया और कहा कि नए और ताज़ा इरादे वालों के आने से सभी लोगों विशेषकर युवाओं को नई उम्मीद मिलेगी और उम्मीद ही बेहतरीन अवसर है। वहीं इस समारोह में इस्लामी गणतंत्र ईरान के नए राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने कहा कि इमाम खुमैनी और इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता के निर्देशों की वजह से इस्लामी क्रांति ने प्रगति की है और उसे मजबूती हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि चार दशकों पहले इस्लामी क्रांति के संस्थापक महान इमाम खुमैनी के नेतृत्व में और कर्तव्यनिष्ठ जनता के साहस के कारण इस सरजमीन पर धार्मिक लोकतंत्र का सूर्य उदय हुआ। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि इन चार दशकों में अधिकारियों और जनता ने लोकतंत्र व्यवस्था को मजबूत बनाने में काफी प्रयास किया। उन्होंने कहा कि इन 40 वर्षों के दौरान क्योंकि इमाम खुमैनी और इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता और व्यवस्था की नीतियों पर ध्यान दिया गया, इसीलिए प्रगति और विकास हुआ। राष्ट्रपति रईसी का कहना था कि दुनिया में शासन का नया मॉडल पेश किया गया। शासन के इस नए मॉडल में दुनिया के साथ धर्म, नैतिकता के साथ विज्ञान, प्रगति के साथ न्याय और गरिमा के साथ समृद्धि की बात की गई।
ما حتما به دنبال رفع تحریم های ظالمانه خواهیم بود، اما حتما سفره مردم را و اقتصاد را شرطی نخواهیم کرد، گره به اراده بیگانگان نخواهیم زد۔
انہوں نے کہا کہ ہم پرتیبندوں کو ہٹائے جانے کا پریاس کریں گے لیکن لوگوں کی آجیوکا کو دوسروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے۔ उल्लेखनीय है कि ईरान के नए राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी का शपथ ग्रहण समारोह 5 अगस्त गुरुवार को होगा, जिसमें 73 देशों के 115 प्रतिनिधि भाग लेंगे। 5 अगस्त को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। पिछले महीने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस की यात्रा के बीच में ईरान की राजधानी तेहरान का भी दौरा किया था, जिसके दौरान उन्होंने ईरान के नए राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी से भी मुलाकात की थी।
और अब चलते हैं अफगानिस्तान और बात करते हैं इस देश में पुराने सामानों की बढ़ती दुकानों और आम जनता के पलायन के बारे में। अफगान सरकार और तालिबान के बीच जारी युद्ध की ताजा स्थिति के बारे में काबुल से IRIB के संवाददाता बहनाम यजदानी अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी सैयद मीसम की आवाज में।
अजीज गजनवी काबुल में पुराने सामान बेचने वालों की यूनियन के अध्यक्ष हैं। गजनवी कह रहे हैं जो कुछ चाहिए सब है उनके पास, उनकी दुकान और गोदाम में अब पुराने सामान रखने की जगह नहीं रह गई है। वो कहते हैं कि आजकल पुराने सामान की दुकानें कई बराबर हो गई हैं। अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर आम लोगों में पाई जाने वाली चिंता ऐसी है कि जो कुछ भी उनके पास है वो सब बेचकर अपने वतन को छोड़ रहे हैं।
फकत एक साल वो चीज़ दौरा।
दुकानदार का कहना है कि लोग अपने घरों के सारे सामानों को बेच रहे हैं। काबुल में पुराने सामान को बेचने वाली दुकानों को देखकर अफगानिस्तान की जनता की ताज़ा स्थिति के बारे में अच्छी तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है। इस दुकानदार का कहना है कि हम इस स्थिति से दुखी हैं। तालिबान ने पिछले 3 महीनों के भीतर लगभग आधे अफगानिस्तान के शहरों से सरकार के नियंत्रण को खत्म कर दिया है। आजकल युद्ध कई प्रांतों के केंद्रों में हो रहा है। तालिबान ने दक्षिण अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत के केंद्रीय शहर लश्करगाह के कुछ भागों पर कब्जा कर लिया है। پچھلی رات اس شہر کی جیل پر بھی حملہ کیا ہے۔ ہرات شہر میں جاری جھڑپوں کو بھی 5 دن ہو گئے ہیں۔ اس بیچ ہرات کی سینیہ پریشد نے شہر کے کچھ علاقوں کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ جھڑپوں کے درشٹیگت اپنے گھروں سے نہ نکلیں۔ وہیں طالبان نے ہرات کے شیندند ایئرپورٹ کو راکٹوں سے نشانہ بنایا ہے۔ یہ وہی ایئرپورٹ ہے جو کچھ سمے پہلے تک امریکی چھاونی کا حصہ تھا۔ اس بیچ طالبان دوارا افغانستان کے کئی بڑے شہروں پر کیے گئے حملوں کے بعد افغان راشٹرپتی اشرف غنی نے سنسد اور سینیٹ کی آپاتکالین بیٹھک بلائی۔ اشرف غنی نے افغانستان میں جاری سنکٹ کے لیے امریکہ کی شانتی پرکریا کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ غنی نے بھلے ہی کہا ہے کہ سرکار شانتی پرکریا کا سمرتھن کرتی ہے، لیکن ان کے بھاشن نے یدھ کی آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا ہے۔
یا در میز واقعی مذاکرہ زانو بزانو میشینیم۔
انہوں نے کہا کہ وارتا کی میز پر بات نہیں ہوگی تو ہم طالبان کو اکھاڑ پھینکیں گے۔ اس بیچ طالبان نے اشرف غنی کے بھاشن پر تیکھی پرتکریا دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان سرکار کی عمر سماپت ہو چکی ہے۔ حالیہ مہینوں میں یدھ میں آئی تیورتا کو دیکھتے ہوئے وہ کتھت شانتی وارتا کی، جس کی بنیاد امریکہ نے رکھی تھی اور یہ طے تھا کہ اس کے آدھار پر افغان سرکار اور طالبان شانتی استھاپت کریں، تو ویوہارک طور پر اس شانتی وارتا کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔
اور اب رک کرتے ہیں بھارت کا اور بات کرتے ہیں بھارت میں پیگاسس، جاسوسی کان اور کسان آندولن کے مدعے کو لے کر وپکش نے ایک جٹتا دکھاتے ہوئے مودی سرکار پر دباؤ بنانے کی کوشش کی ہے۔ اس بارے میں وستار سے جانکاری دے رہے ہیں دلی سے ہمارے سمواددتا شمشاد کاظمی۔
بھارتیہ سنسد کے مانسون ستر میں آج بھی پیگاسس، جاسوسی کانڈ، کسان آندولن اور مہنگائی کو لے کر وپکشی دلوں نے ہنگامہ کیا، جس کے کارن دونوں سدنوں کی کارواہی آج بھی بادھت رہی۔ وپکشی دل پیگاسس جاسوسی کانڈ کو لے کر سنسد میں چرچا کی مانگ کر رہے ہیں، لیکن سرکار اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ سرکار کا کہنا ہے کہ اس مدعے پر کیندریہ منتری سنسد میں بیان دے چکے ہیں۔ ادھر اس سے پہلے آج کانگریس کے پورو ادھیکش راہل گاندھی نے وپکش کے نیتاؤں کو ناشتے پر آمنترت کیا۔ اس بیٹھک میں، جو اس سپتاہ کی ایسی دوسری بیٹھک تھی، کرونا مہاماری کے پربندھن میں سرکار کی کتھت وفلتا اور کسان آندولن پر بھی چرچا ہوئی۔ اس بیٹھک میں سنسد کے باہر موک پارلیمنٹ آیوجت کرنے کے وکلپ پر بھی چرچا کی گئی۔ اس بیٹھک میں پیگاسس جاسوسی کانڈ پر ساجھا رڑنیتی بنائی گئی ہے۔ راہل گاندھی کی اس بیٹھک میں این سی پی، شیو سینا، آر جے ڈی، سپا، بھاجپا، آئی یو ایم ایل، آر ایس پی، کے سی ایم، جے ایم ایم، نیشنل کانفرنس، ٹی ایم سی اور ایل جے ڈی سمیت 17 پارٹیوں کے نیتاؤں نے بھاگ لیا۔ عام آدمی پارٹی نے اس بیٹھک کا بہشکار کیا۔ وپکشی دلوں کی اس بیٹھک میں شرومنی اکالی دل کو آمنترت نہیں کیا گیا تھا۔ پارٹی کی سانسد ہرسمرت کور نے کہا،
ہمارا سب سے بڑا مدعا ہے کسان، کیونکہ پچھلے 13 مہینوں سے ہر روز کسان ایک کالے قانون واپس کرانے کے لیے مر رہے ہیں۔ جتنا یہ سرکار دیری کر رہی ہے اور جانے جا رہی ہیں، تو ہمارے لیے جان سب سے قیمتی ہے۔ جو بھی پارٹی کسان کے مدعے پہ کھڑی ہے، ہم ان کے ساتھ کہیں پہ بھی جانے کو تیار ہیں، لیکن کسان کو چھوڑ کے جو لوگوں کو جاسوسی زیادہ امپورٹنٹ لگنے لگی کہ فون میں کون سن رہا ہے، یہ ضروری امپورٹنٹ مدعا ہے، میں مانتی ہوں، لیکن کسان سے زیادہ ضروری نہیں ہے۔
51 ورشیہ راہل گاندھی نے دوسرے وپکشی دلوں کے سانسدوں کے ساتھ سائیکل سے سنسد تک یاترا کی۔ انہوں نے کہا کہ اس یاترا کا ادیشیہ پیٹرولیم اتپادوں کے بڑھتے مولیوں پر سرکار کا دھیان آکرشت کرنا ہے۔ سنسد میں سرکار کو گھیرنے کی وپکش کی رڑنیتی کے بیچ آج بھاجپا سنسدی دل کی بیٹھک کو سمبودھت کرتے ہوئے پردھان منتری نریندر مودی نے وپکش پر جم کر نشانہ سادھا اور آروپ لگایا کہ وہ سنسد نہیں چلنے دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سنسد، سمویدھان، لوک تنتر اور دیش کی جنتا کا اپمان ہے۔ اس سے پہلے 27 جولائی کو بھی بھاجپا سنسدی دل کی بیٹھک میں پردھان منتری نریندر مودی نے کانگریس پر جم کر نشانہ سادھا تھا اور کہا تھا کہ یہ پارٹی سدن نہیں چلنے دے رہی ہے۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دلی۔
دوستوں، اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا کا دینک کاریکرم یہیں سماپت ہوتا ہے۔ यह रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, हमारी आज की सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा कुरानी किस्से, लेकिन उससे पहले प्रस्तुत है कार्यक्रम रोहिंग्या त्रासदी। रोहिंग्या त्रासदी। दोस्तों, रोहिंग्या त्रासदी की एक अनकड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर है रविश जैदी का सलाम स्वीकार कीजिए। इस बात के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं कि म्यांमार की सेना और सरकार ने रखाइन प्रांत में रोहिंग्या मुसलमानों के मूल अधिकारों का व्यापक रूप से यथासंभव हनन किया है। रोहिंग्याओं के अधिकारों का हनन इतने बड़े पैमाने पर किया गया है कि इससे जीवन और मानवाधिकारों का हर पहलू प्रभावित हुआ है। ये सब ऐसी स्थिति में किया गया है कि जब म्यांमार नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 1966, बाल अधिकारों के कन्वेंशन, महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन के कन्वेंशन और कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों का सदस्य है। म्यांमार सरकार के लिए मानवाधिकारों का सम्मान बाध्यकारी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों और संधियों से हटकर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक इस देश की सरकार रोहिंग्याओं के मानवाधिकारों का सम्मान करने के लिए बाध्य है। 2008 में म्यांमार के नए संविधान में सभी राष्ट्रीय जातियों को औपचारिकता प्रदान की गई है। संविधान के 8वें अध्याय में नागरिकों को समान अधिकार देने और शिक्षा तथा चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने में भेदभाव को नकार दिया गया है। गैर कानूनी गिरफ्तारियों पर पाबंदियां लगा दी गई हैं, लेकिन संविधान का घोर उल्लंघन करते हुए म्यांमार की सरकार ने रोहिंग्या मुसलमानों को मूल अधिकारों से भी वंचित कर दिया और उनका नरसंहार करके उन्हें बांग्लादेश भागने पर मजबूर कर दिया। रोहिंग्याओं पर होने वाले अत्याचारों के बारे में बात करते हुए भारत के गाजियाबाद के एक मुफ्ती ने कुछ इस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी।
देखिए, म्यांमार का जो इस वक्त दर्दनाक सूरत हाल है वो एक इंसानियत की कत्ल है। आपने देखा होगा वीडियो के जरिए के छोटे छोटे मासूम बच्चे, जो दूध पीता हुआ बच्चा है जिसकी उम्र दो महीना, चार महीना, छः महीना है, उन बच्चों तक को कत्ल किया जा रहा है। ख्वातीन को कत्ल किया जा रहा है, उन पर बुलडोजरें चलाई जा रही है। ये मैं समझता हूँ कि एक इंसानियत की कत्ल है और इसमें सब लोगों को आगे आ कर के इसके खिलाफ जो है कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना से जल्द जो है उनको इंसाफ मिले और इस तरह के कत्ल गारतगरी का बाजार जो है बंद हो। देखिए, मुस्लिम देश ही नहीं कि एक इंसानियत की कत्ल है। इंसान सिर्फ मुसलमान नहीं है, मुसलमान को ही नहीं बल्कि तमाम लोगों को आगे आनी चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो या दूसरे धर्म के लोग हो, सब लोगों को आगे आनी चाहिए और उनको इंसाफ दिलानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक तुर्की ने पहल की है वो एक अलग जगह है, अपनी जगह उन्होंने पहल की है, लेकिन उनके साथ साथ तमाम लोगों को आनी चाहिए, अक्वामे मुत्तहिदा के जरिया इस काम को उठानी चाहिए और उनको इंसाफ दिलानी चाहिए।
नागरिकों के अधिकारों को मान्यता देने वाले म्यांमार के अपने कानूनों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी भी देश में नागरिकों की नागरिकता को छीने जाने और उनके मौलिक अधिकारों के हनन को अपराध मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों के अनुसार जिनका पालन करना म्यांमार के लिए जरूरी है, किसी एक नागरिक की नागरिकता छीनना भी गैर कानूनी और निंदनीय है। एक पूरे समुदाय का व्यवस्थित दमन तो और ही बात है।
म्यांमार सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विपरीत न केवल रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिकता से वंचित कर दिया बल्कि उनका नस्लीय सफाया भी किया और उन्हें उनके वतन से दरबदर कर दिया। जबकि अगर म्यांमार रोहिंग्या मुसलमानों को एक जातीय समूह के रूप में औपचारिकता प्रदान भी न करे तब भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक उनके मूल मानव अधिकारों का सम्मान करना ही पड़ेगा। गाजियाबाद के ही एक अन्य मुफ्ती ने कहा कि म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार का नागरिक स्वीकार न करना एक बहुत बड़ा अपराध है। उन्होंने कहा,
देखिए पूरा का पूरा मसला जो अभी लोगों के सामने आया वो सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए सामने आया, इसको न्यूज चैनल दिखाने के लिए भी तैयार नहीं है। और इतना खतरनाक ये मसला है, उन लोगों ने जो बुनियाद ये बनाई है कि ये लोग बांग्लादेशी हैं और बांग्लादेश से यहाँ 600 साल पहले गुलाम बनाकर लाए गए थे, और ये सब लोग जो आज यहाँ मुसलमान मौजूद हैं उन्हीं की नस्लें हैं। 600 साल पुरानी तारीख उठाकर वो लोग इनको साबित कर रहे हैं कि लोग यहाँ के बाशिंदे नहीं हैं। पहली बात तो ये है कि 600 साल पुरानी तारीख उनके पास महफूज होने का सवाल ही नहीं होता, तो तारीख उनके पास महफूज नहीं, एक बहाना बनाया गया। और अगर सपोज करो, फर्ज करें कि अगर वो 600 साल पहले वहां आए भी थे तो अब उनकी नस्लों पर नस्लें न जाने कितनी नस्लें वहां पर गुजर चुकी हैं। और कुरान पर हमारा यकीन है, कुरान कहता है मिना खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम मिना नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कि हमने तुम्हें इसी से पैदा किया, इस मिट्टी से हमने तुम्हें पैदा किया और हम इसी में तुम्हें लौटाएंगे और फिर इसी से जिंदा खड़ा कर देंगे। वहां के जितने लोग आज मौजूद हैं मैं समझता हूं कि एक भी गैर मुल्की नहीं है, उसी मिट्टी से उनका खमीर बना है, उसी मिट्टी से सारे उनके जर्रात उनके अज्जा बने हैं और उसी मिट्टी से वो तैयार हुए हैं, उसी मिट्टी से वो लोग पैदा हुए हैं, तो गैर मुल्की होने का उनका सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले नंबर पर तो ये चीज, दूसरे नंबर पर ये चीज है कि अगर हम ये भी मान लें कि वो गैर मुल्की ही है, वो पहले भी नहीं, अभी वो हिजरत करके वहां पहुंचे, वो गैर मुल्की भी नहीं है, वो गैर मुल्की है, तो इस सब के बावजूद भी क्या हमारी इंसानियत बिल्कुल मर चुकी है? अगर मुसलमानों के ऊपर दुनिया में किसी भी कोने में कहीं जरा सी उंगली रखने की जगह मिलती है तो सारी दुनिया के न्यूज चैनल, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पूरा का पूरा प्रिंट मीडिया एकजुट हो जाता है और मुसलमानों को बदनाम करने में बिल्कुल सामने आ जाता है। लेकिन इतने बड़े मजालिम के कुछ जो सोशल मीडिया के जरिए वहां की तस्वीर, वहां की वीडियो सामने आई हैं, छोटे छोटे बच्चों को, के उन बच्चों को जो है उनके गलों में फंदे डालकर उनको घसीटा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को जिंदा जलाकर उनको नेजों पर लटकाया जा रहा है, और मर्दों औरतों को नंगे करके उनको पेड़ों पर लटकाकर उनके शर्मगाहों में नेजे, इस तरह की हरकतें, इतनी जलील और गंदी हरकतें घिनौनी की जा रही है कि जिसका एक इंसान तस्वीर भी नहीं कर सकता। तो क्या सारी इंसानियत खत्म हो चुकी है? सारी दुनिया के लोगों के जमीर बिल्कुल मर चुके हैं? वो लोग के जो जरा जरा सी बात के लिए एकदम पूरी दुनिया के न्यूज चैनलों को एक चीज पर जमा कर देते हैं और एक चीज का बतंगड़ा बना बैठते हैं, क्या इतने बड़े हादसात ये उनको नजर नहीं आए? अगर कहीं मुसलमान अपने बचाव के लिए भी कोई कदम उठाता है तो सारी दुनिया उनको दहशतगर्द कहती है, और ये दहशतगर्द सारी दुनिया के अंदर, इनकी दहशतगर्दी सोशल मीडिया के जरिए पहुंची वही सही।
समस्त अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानवाधिकार के कन्वेंशनों की धज्जियां उड़ाते हुए म्यांमार ने 1982 में रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिकता से वंचित कर दिया और उनसे उनके मूल अधिकार भी छीन लिए। देश के संविधान का उल्लंघन करते हुए सरकार ने बहुसंख्यक बौद्धों और अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमानों के बीच सांप्रदायिकता को हवा दी और रोहिंग्याओं के नरसंहार के लिए भूमि प्रशस्त की। ये अपराध जाति और धर्म का संरक्षण जैसे गैर कानूनी नस्लवादी संगठनों द्वारा करवाया गया, जिसे स्पष्ट रूप से म्यांमार की सेना का संरक्षण प्राप्त है। रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ जातीय और धार्मिक भेदभाव का दायरा बहुत व्यापक और व्यवस्थित है, जिसमें आवाजाही की आजादी को खत्म करना, निवास की स्वतंत्रता के अधिकार से लेकर भोजन, स्वास्थ्य और रोहिंग्या बच्चों की शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करना शामिल है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत हर किसी को अपने देश में आवाजाही और निवास स्थान चुनने का अधिकार है, लेकिन इसके विपरीत रखाइन प्रांत में रोहिंग्याओं को शहरों की यात्रा और एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए भी किसी अधिकारी से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। रोहिंग्या मुसलमानों को जिन मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया है, उनमें से एक अपने पैतृक गांवों में संपत्ति के मालिकाना अधिकार से भी वंचित करना है, जबकि विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुच्छेद 17 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हर व्यक्ति को अकेले या दूसरे की भागीदारी में संपत्ति रखने का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र के एक अन्य सदस्यों की तरह म्यांमार भी इस बाध्यकारी घोषणा पत्र पर अमल करने के लिए बाध्य है, लेकिन म्यांमार सरकार ने घरों को ध्वस्त करके और रोहिंग्याओं की संपत्तियों को जब्त करके उनके मौलिक अधिकारों का व्यापक हनन किया है। म्यांमार सरकार ने रोहिंग्या मुसलमानों के भोजन के अधिकार का भी हनन किया है और सभी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों के विपरीत रोहिंग्याओं की संपत्तियों को नष्ट करके खाद्य सामग्री तक उनकी पहुंच के मार्ग में रुकावट डाली है। सैनिकों और बौद्ध चरमपंथियों ने गांवों और खेत खलियानों को आग के हवाले कर दिया, जिससे रोहिंग्या ग्रामीणों के भोजन के मुख्य स्रोत नष्ट हो गए और उनकी आबादी गंभीर रूप से कुपोषण का शिकार हो गई। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों को जिन मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया है, उनमें से एक रोहिंग्या बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीनना है। रखाइन प्रांत में देश के किसी भी क्षेत्र की तुलना में सबसे कम साक्षरता दर है और रोहिंग्याओं के चिकित्सा और इंजीनियरिंग जैसे विषयों में अध्ययन करने पर पाबंदी है। रोहिंग्या छात्र विश्वविद्यालयों में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, इसलिए कि विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए नागरिकता कार्ड की आवश्यकता होती है, जो उनसे छीन लिए गए हैं। सुवैदुल्ला नामक एक रोहिंग्या युवक कहता है कि म्यांमार में हमारे पास पढ़ने का मौका था, लेकिन वहां सरकार के समर्थन से कट्टरपंथी बौद्धों द्वारा किए जाने वाले जनसंहार की वजह से हमें पढ़ाई छोड़नी पड़ गई। पीड़ित रोहिंग्या छात्र ने संयुक्त राष्ट्र संघ सहित दुनिया भर से सवाल पूछा है कि जब शिक्षा प्राप्त करना मानवाधिकार का एक हिस्सा है, तो हमें इससे क्यों वंचित रहना पड़ रहा है? क्या हम मानव नहीं है?
माय नेम इज सुवैदुल्ला। In Myanmar, I had chance to study education. I had left my country due to a conflict. Now we are calling it genocide by our government jointly with extremist Buddhists. After arriving here in Bangladesh, I didn't get any chance to study. I went systematic higher education. According to Universal Declaration of Human Rights, UDHR, education is basic human right. But today, why we have not this right? Are we not human?
दुर्भाग्य से कोरोना वायरस महामारी के फैलने के कारण आंग सांग सूची और रोहिंग्या मुसलमानों के अन्य हत्यारों ने अपनी जिम्मेदारी से बचने और अपनी दमनकारी नीतियों को जारी रखने के लिए कोविड 19 को बहाना बनाया। महीनों बीत जाने के बावजूद सैकड़ों मुसलमान, जिनमें एक बड़ी संख्या महिलाओं की है, लापता हैं और अधिकांश पीड़ितों के शव बंगाल की खाड़ी के पूर्व में स्थित एक द्वीप के पास पाए गए हैं। म्यांमार सरकार सेना और बौद्ध चरमपंथियों के अपराधों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव पर यूरो न्यूज टीवी चैनल ने रिपोर्ट उल्लेख किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन वे विश्व समुदाय के विचारों और चिंताओं को दर्शाते हैं। म्यांमार सरकार ने कई मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों पर हस्ताक्षर किए हैं और मानवाधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन सच्चाई ये है कि म्यांमार सरकार रोहिंग्याओं के प्रति हमेशा ही अपने दायित्वों से बचती रही है। इस देश की सेना, सुरक्षा बल और बौद्ध चरमपंथी रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ अमानवीय अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि रोहिंग्या मुसलमानों के दमन और नरसंहार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा के गैर बाध्यकारी प्रस्तावों के अलावा इस संबंध में सुरक्षा परिषद ने कोई बाध्यकारी प्रस्ताव पारित नहीं किया है। दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। हमें अनुमति दें, खुदा हाफिज।
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ ریڈیو تہران سچائی اور ان سب کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سناتا۔ ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। قرآن قصے۔
دوستو، کارکرم قرآن قصے کی کرنے کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں مریم مہردادی اور محمد مہدی کا سلام سویکار کیجیے۔
اتہاس میں ملتا ہے کہ مدینہ نگر کے ایک مسلمان نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نویدن کیا تھا کہ وہ اس کے دھنوان ہونے کے لیے ایشور سے پرارتھنا کریں۔ اس وقت کے جواب میں پیغمبر اسلام نے اس سے کہا تھا کہ وہ تھوڑا دھن جس کے لیے تم ایشور کے پرتی کرتجتا پرکٹ کرو، اس ادھک دھن سے کہیں بہتر ہے جس کے لیے تم ایشور کے پرتی کرتجتا پرکٹ نہ کر پاؤ۔ حضرت محمد کی بات سننے کے بعد اس ویکت نے کہا کہ میں وچن دیتا ہوں کہ یدی ایشور نے مجھے دھن دیا تو میں دان دکشنا کروں گا اور سبھی انوار دھارمک کر بھی ادا کروں گا۔ بعد میں پیغمبر اسلام کی پرارتھنا سے وہ ویکتی دھنوان ہو گیا، کنتو اب اس کے پاس نہ تو نماز پڑھنے کا سمے رہا اور نہ ہی لوگوں کی سیوا کرنے کا۔ حد تو یہ ہو گئی کہ جب اس سے زکات دینے کو کہا گیا تو اس نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ آئیے اب اس پوری داستان کو وستار سے سنتے ہیں، جو واسطو میں سورہ توبہ کی کچھ آیتوں کے نازل ہونے کی بھومکا ہے۔
دوستوں، مدینے میں رہنے والوں میں سے ایک سالب بن حاتم بن عمر انصاری بھی تھا۔ اس کا سمبندھ اوس قبیلے سے تھا۔ سالب نے بدر اور احد یدھوں میں بھی بھاگ لیا تھا۔ ان سبھی باتوں کے باوجود اتہاس میں سالب بن حاتم کو منافق یا متھیاچاری کے روپ میں بتایا گیا ہے۔ اس کے لیے مشہور ہے کہ اس نے تبوک یدھ میں مسلمانوں میں بیچ رہتے ہوئے مسلمان کے منوبل کو گرانے کے لیے کئی پرکار کی افواہیں پھیلائی تھیں۔ ویسے سالب بن حاتم ایک نردھن ویکتی تھا۔ وہ ادھک تر اپنی پریشانیوں اور مشکلوں کا رونا رویا کرتا تھا۔ وہ اتنا نردھن تھا کہ کبھی کبھی تو دن میں کیول ایک ہی سمے کھانا کھا پاتا تھا، وہ بھی سوکھی روٹی اور کھجور۔
ایک بار سالب مسجد میں بیٹھا ہوا اپنی نردھنتا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جب نماز ختم ہو گئی تو وہ پیغمبر اسلام کے پاس گیا۔ اس نے ان سے کہا کہ آپ میرے لیے ایشور سے دعا کیجیے کہ میں دھنوان ہو جاؤں۔ پیغمبر اسلام سالب بن حاتم کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ انہوں نے سالب کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ یہ تھوڑا سا دھن جس کے لیے تم ایشور کے پرتی कृतज्ञता प्रकट करो उस धन से अधिक बेहतर है जिसके लिए तुम ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट न कर सको। इसके बाद पैगम्बर इस्लाम ने सलफ से कहा कि क्या मेरी जीवन शैली तुम्हारे लिए आदर्श नहीं है? ईश्वर की सौगंध, अगर मैं चाहूँ तो पहाड़ को अपने लिए सोना में बदल सकता हूँ। सलफ ने पैगम्बर इस्लाम की बातें सुनी और खामोश हो गया।
अगले दिन वो दूसरे लोगों के मस्जिद पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच गया। वहां जाकर उसने पैगंबर इस्लाम से फिर अपने धनवान होने की प्रार्थना करने को कहा। हजरत मोहम्मद ने उसे फिर कहा कि तुम अधिक पैसे की लालच छोड़ दो। दूसरे दिन की बात सुनकर फिर वो खामोश हो गया और अपने घर वापस चला गया। तीसरे दिन वो फिर मस्जिद आया। मस्जिद में पहुंचने के बाद सालब ने पैगंबर इस्लाम को ईश्वर की सौगंध देते हुए कहा कि अगर ईश्वर ने मुझे पैसा दिया तो फिर मैं लोगों का पूरा ध्यान रखूंगा और मेरे जो अधिकार होंगे उनको भी अदा करूंगा। उसकी बातें सुनने के बाद पैगंबर इस्लाम ने कहा कि हे ईश्वर, सालब जो पसंद करता है उसे प्रदान कर।
दोस्तों, इस घटना के कुछ समय के बाद सालब के एक नजदीकी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई। उसकी मौत के बाद उसका सारा धन सालब को मिल गया। इस प्रकार सालब बिन हातिब धनवान हो गया। उसने उस पैसे से भेड़ बकरियां खरीदकर पशुपालन का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका काम बढ़ता गया और वो अधिक धनवान होता चला गया। सालब का काम इतना बढ़ चुका था कि अब मदीने में उसे रहने में परेशानी हो रही थी, इसलिए उसने मदीने के बाहर जगह लेकर अपना काम शुरू किया। अधिक पैसा आने के बाद सालब पूरी तरह से भौतिक जीवन में डूब गया। उसका सारा समय अब पैसा कमाने के काम में ही गुजरने लगा। धीरे धीरे उसने मस्जिद जाना भी कम कर दिया। अब सालब वो निर्धन सालब न होकर एक अति धनवान इंसान बन चुका था।
दोस्तों, उस समय तक इस्लाम में ज़कात देने का आदेश नहीं आया था। जब ज़कात का आदेश आया तो पैगंबर इस्लाम ने इस ईश्वरीय आदेश से मुसलमानों को अवगत करवाया। जब मुसलमानों को ज़कात के बारे में पता चला तो उनमें से जिनके पास धन संपत्ति थी उन्होंने खुशी खुशी ज़कात दी। जब मदीने के लोग ज़कात दे चुके तो पैगंबर इस्लाम ने कुछ लोगों को मदीने के बाहर भेजा कि वो वहाँ जाकर उन लोगों से ज़कात इकट्ठा करें। उन्होंने दो लोगों को ज़कात लेने के लिए सालब बिन हातिब के पास भेजा। इन लोगों का संबंध बली सलीम से था। वे लोग सालब के पास पहुँचे और उन्होंने पैगंबर इस्लाम का आदेश उसे सुनाया।
दोस्तों, ये बात सुनकर ही सालब भड़क गया। उसने कहा कि तुम लोग जाकर पैगंबर इस्लाम से कह दो कि सालब अभी इतना अमीर नहीं हुआ है कि वो ज़कात दे सके। जिन लोगों को पैगंबर इस्लाम ने सालब के पास भेजा था उनको सालब की आर्थिक स्थिति का भली भांति ज्ञान था। उन्होंने वहीं पर नज़दीक में सालब की बहुत सी भीड़ों को चढ़ते हुए देखा था। उन्होंने बहुत ही आश्चर्य से कहा कि सालब, तुम मदीने के बड़े लोगों में से एक हो और तुम्हारा पशुपालन का काम बहुत बड़ा है। इतना होने के बाद तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? सालब ने कहा कि ये भीड़ें जो तुम देख रहे हो वो सब मेरी नहीं हैं। लेकिन अगर ये मान लिया जाए कि ये मेरी हैं, तो ये भी जान लो कि इनको पालने में पैसा लगता है, इनके चारे का इंतजाम करना पड़ता है, इनकी देखभाल करनी होती है, इन सब कामों के लिए पैसा चाहिए। इस प्रकार का कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता।
दोस्तों, यही दो लोग मदीने के बाहर रहने वाले कई लोगों के पास गए जिन्होंने ज़कात दी। उन लोगों में से एक बनी सलीम का व्यक्ति था। जब उससे ज़कात के लिए कहा गया तो उसने बहुत ही खुशी खुशी अपने सबसे अच्छे ऊँटों को ज़कात में दे दिया। उसके बाद दोबारा वे लोग सालब के पास गए और उससे फिर ज़कात की बात कही। اب کی بار اس نے زکوۃ دینے سے انکار کرتے ہوئے بہت ہی دوسساہس کے ساتھ کہا کہ جا کر پیغمبر سے کہہ دو کہ سالف زکوۃ نہیں دینا چاہتا۔
جب یہ لوگ مدینے واپس پہنچے تو انہوں نے پیغمبر اسلام کی سیوا میں حاضر ہو کر پوری بات بتائی۔ پیغمبر اسلام نے جب پوری بات سنی تو بنی سلیم کے وقت کے لیے دعا کی اور کہا کہ دھکار ہو سالف پر، دھکار ہو سالف پر۔ اسی بیچ سورہ توبہ کی 75، 76 اور 77 نمبر کی آیتیں نازل ہوئیں جن کا انواد اس پرکار ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایشور سے پرتیجیا کی تھی کہ یدی تو اپنی کرپا سے ہمیں پردان کر دے گا تو نشچت روپ سے ہم دان دکشنا کریں گے اور بھلے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو جب ایشور نے اپنی کرپا سے انہیں پردان کر دیا تو انہوں نے اس میں کنجوسی کی اور پرتیجیا کو پیٹ دکھا کر منہ پھیر لیا، تو ان کے جھوٹ نے ان کے ہردیوں میں متھیا کو مضبوط بنا دیا اس دن تک کے لیے جب وہ ایشور سے بھینٹ کریں گے، کیونکہ انہوں نے ایشور کو دیے گئے وچن کو توڑا اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔
یہ آیت منشی کے ہردے میں متھیا کے جڑ پکڑنے کے کارنوں کا الیکھ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ایشور کو دیے گئے وچنوں کو توڑنا اور جھوٹ بولنا منشی کو ایمان سے دور کر کے اسے متھیا میں گرست کر دیتا ہے۔ پیغمبر اسلام کے کچھ نکٹورتی ساتھی بھی متھیا میں گرست ہو گئے تھے اور اپنے ایمان کو گنوا بیٹھے تھے۔ اس آیت سے ہم نے سیکھا کہ کتھنی اور کرنی میں متھیا دھیرے دھیرے منشی کی آتما اور ہدے میں جڑ پکڑ لیتی ہے۔ ونچت لوگوں کے پرتی کنجوسی اسی سنسار میں منشی کی بربادی کا کارن بنتی ہے۔ یہ آیتیں ہمیں سیکھ دیتی ہیں کہ یدی منشی میں کشمتا نہ ہو تو ایشور کی انکمپائیں اس کے لیے دنڈ بن جاتی ہیں۔ اس پرکار کا ویکتی اور وچن توڑنے والا بن جاتا ہے۔ وہ دھن کبھی بھی سوباگیہ نہیں ہو سکتا جو منشی کو دھارمک پرتیبدھتاؤں اور لوگوں کو ان کے آرتھک ادھیکاروں کو دینے سے روک دے۔
تو شوتاؤ، اسی کے ساتھ یہ کارکرم یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔ انوبد نے خدا حافظ۔
دوستوں، آپ سن رہے ہیں ریڈیو تہران کی ہندی سیوا اور پرستوت ہے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ ورشٹھ نیتا نے نئے راشٹرپتی کو انمودت کیا، کہا جنتا سے سچ بولیں۔ ایران نے برٹن اور امریکہ کے بھڑکاؤ بیان پر چیتاونی دی ہے۔ فلسطینیوں کا سنگھرش کامیاب رہا، اسرائیلی اپنے باتوں سے پیچھے ہٹے۔ پیگاسس جاسوسی کے مدعے پر سپریم کورٹ میں یاچیکا درج ہوئی ہے۔ دوستوں، ہمیں آشا ہے کہ ہمارا یہ پرسارن بھی آپ کو صدا کی بھانتی پسند آیا ہوگا۔ کاریکرموں کے بارے میں اپنے وچاروں ایوم پرتیکریاؤں سے ہمیں اوشیہ اوگت کرائیے گا۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے hindi@ws.irib.ir۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے parstoday.ir۔ تو اسی کے ساتھ اختر عباس اور ساتھیوں کو انومتی دیں۔ خدا حافظ۔